आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बहुत बातें हो रही हैं हर तरफ।
हाँ बिल्कुल, खासकर ये जो भाषा समझने वाले सिस्टम्स हैं ना।
हाँ वही, जो लिखते हैं, जवाब देते हैं, यहाँ तक कि कोड भी बना देते हैं। कभी सोचा है कि ये सब, मतलब ये जादू चलता कैसे है?
ये सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब हमें थोड़ा पीछे ले जाता है, साल 2017 में।
2017 क्या हुआ था तब?
तब गूगल के कुछ रिसर्चर्स ने एक पेपर निकाला था और उसका टाइटल बड़ा दिलचस्प था, अटेंशन इज ऑल यू नीड।
अटेंशन इज ऑल यू नीड, सिर्फ ध्यान ही काफी है, सुनने में तो बहुत सीधा लगता है।
हाँ सुनने में, पर इसने एआई की दुनिया में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया था।
तो आज हम इसी पेपर पर बात करेंगे और ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर।
जी हाँ बिल्कुल, गहराई से समझेंगे क्योंकि यही वो तकनीक है जो आजकल के बड़े बड़े एआई मॉडल्स, चाहे वो चैट जीपीटी हो या गूगल का अनुवाद वाला सिस्टम,
उन सब की बुनियाद है।
एकदम,
उनकी रीढ़ की हड्डी समझ लीजिए। हमारी जानकारी का आधार तो यही पेपर होगा और इस पर जो विश्लेषण हुए हैं।
हाँ वही, और हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो एक आइडिया है ना अटेंशन, इसने कैसे भाषा समझने के पुराने तरीकों को मतलब पूरी तरह बदल दिया, कैसे एक नई क्रांति शुरू हुई।
ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस अटेंशन की अहमियत को समझने के लिए शायद पहले ये जानना जरूरी है कि इससे पहले एआई भाषा कैसे समझता था।
सही, खासकर जब काम सीक्वेंस वाला हो, जैसे एक भाषा से दूसरी में अनुवाद करना।
हाँ अनुवाद।
तो देखिए, ट्रांसफॉर्मर से पहले दो मुख्य तकनीकें थी, एक RNS यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स,
रिकरेंट,
और कुछ हद तक CNNs भी, मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। ये मिलकर अक्सर एक एनकोडर डिकोडर मॉडल बनाते थे।
एनकोडर डिकोडर ये क्या है?
आसान भाषा में एनकोडर इनपुट वाक्य को, मान लीजिए अंग्रेजी का वाक्य, उसको समझता था और डिकोडर उस समझ के आधार पर आउटपुट वाक्य जैसे हिंदी में बनाता था।
अच्छा, और ये RNS कैसे काम करते थे? इनका नाम रिकरेंट क्यों?
रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला। तो RNNs वाक्य को वैसे ही पढ़ते थे जैसे हम इंसान पढ़ते हैं, एक शब्द फिर अगला फिर उसके बाद वाला, क्रम से।
अच्छा, एक एक करके।
हाँ, और हर शब्द को प्रोसेस करते वक्त वो पिछले शब्द से मिली जानकारी को भी याद रखते थे, एक तरह की मेमोरी।
ये तो ठीक लग रहा है, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी?
प्रॉब्लम्स थी और बड़ी थी। पहली, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर थी।
कमजोर मतलब?
मतलब अगर वाक्य बहुत लंबा हो गया, मान लीजिए 50-60 शब्द, तो जब तक RNN आखिर तक पहुंचता वो शुरू की बातें भूल जाता था।
अरे
हाँ, इसे लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी की समस्या कहते हैं। अब सोचिए अनुवाद या समरी बनाने के लिए ये कितनी बड़ी दिक्कत है।
हाँ बात तो सही है, ये तो एक बड़ी कमी हुई, और कोई दिक्कत?
दूसरी बड़ी दिक्कत थी स्पीड, रफ्तार। क्योंकि वो एक एक शब्द करके प्रोसेस करते थे तो पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती थी।
मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं हो सकती थी?
हाँ बिल्कुल नहीं। आप सोचिए आजकल के जो सुपर फास्ट कंप्यूटर चिप्स हैं, GPU TPU, वो हजारों काम एक साथ कर सकते हैं।
हाँ,
पर RNNs का डिजाइन ही ऐसा था कि वो इस क्षमता का फायदा उठा ही नहीं पाते थे, जैसे हजारों लोग हो पर काम एक ही लाइन में लगकर करना पड़े।
समझ गई, तो ये AI की स्पीड पर एक ब्रेक जैसा था।
सही कहा, एकदम ब्रेक जैसा।
और CNNs, उनका क्या रोल था? वो तो तस्वीरों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं ना।
हाँ, मुख्य रूप से तो वो इमेज के लिए बने थे, पिक्सल के पैटर्न पहचानने के लिए, पर उन्हें टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल किया गया।
अच्छा,
वो शब्दों के छोटे छोटे ग्रुप्स में पैटर्न ढूंढने में ठीक थे, जैसे 2-3 शब्दों के फ्रेज में, लेकिन लंबी दूरी के रिश्ते समझने में या पूरे वाक्य का मतलब निकालने में वो भी RNNs जितने अच्छे नहीं थे, और पैरेलल प्रोसेसिंग की दिक्कत वहां भी थी।
तो कुल मिलाकर ट्रांसफॉर्मर से पहले स्थिति ये थी कि मॉडल या तो लंबी जानकारी भूल जाते थे या बहुत धीमे थे,
या दोनों, और सबसे बड़ी बात वो मॉडर्न हार्डवेयर का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे थे। और इसी माहौल में वो पेपर आया, अटेंशन इज ऑल यू नीड, और उसने बहुत ही कह सकते हैं हिम्मत वाला सवाल पूछा।
क्या सवाल था वो?
सवाल ये था कि क्या हम भाषा समझने के लिए ये RNS और CNNs, इनको पूरी तरह हटा सकते हैं? क्या सिर्फ अटेंशन नाम की चीज से एक बेहतरीन मॉडल बन सकता है?
मतलब पुरानी स्थापित तकनीकों को चैलेंज किया।
हाँ बिल्कुल, ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी क्योंकि RNS और CNNs ही सीक्वेंस मॉडलिंग के राजा माने जाते थे।
और इसी सवाल के जवाब में आया ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर।
एकदम, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा मॉडल था जिसमें ना कोई RNA लेयर थी ना कोई CNN लेयर, सब कुछ अटेंशन पर। ढांचा वही एनकोडर डिकोडर वाला रखा, पर अंदर की मशीनरी पूरी बदल दी।
और क्या ये काम कर गया, मतलब सिर्फ अटेंशन से?
ना सिर्फ काम किया बल्कि कमाल कर दिया। ट्रांसफॉर्मर ने उस समय के बेस्ट मॉडल्स को, जिन्हें सोटा यानी स्टेट ऑफ द आर्ट कहते हैं, उनको पीछे छोड़ दिया।
सच में?
हाँ, खासकर मशीन ट्रांसलेशन में, जैसे अंग्रेजी से जर्मन या अंग्रेजी से फ्रेंच। पेपर में ब्लू स्कोर दिए गए थे जो अनुवाद की क्वालिटी नापते हैं, और स्कोर साफ दिखा रहे थे कि ट्रांसफॉर्मर बेहतर था
और तेज भी ट्रेनिंग में।
हाँ, और ट्रेनिंग में भी कम समय ले रहा था। ये दोनों चीजें एक साथ होना बड़ी बात थी।
कमाल है।
तो वाकई अटेंशन ही काफी था, ये तो गेम चेंजर हुआ होगा एआई में। पर अब सवाल ये है कि ये अटेंशन चीज आखिर है क्या, और ये ट्रांसफॉर्मर अंदर से कैसा है, काम कैसे करता है?
चलिए अब अंदर चलते हैं इसके।
जैसा मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मर में एक एनकोडर होता है, एक डिकोडर। एनकोडर इनपुट को समझता है, डिकोडर आउटपुट बनाता है। पेपर में बताया गया कि दोनों छह एक जैसी परतों यानी लेयर से बने हैं।
छह परतें एनकोडर में, छह डिकोडर में,
और हर परत के अंदर,
हर परत में दो या तीन उप परतें होती हैं, सब लेयर्स।
और यहाँ एक जरूरी डिजाइन पैटर्न है, हर सब लेयर का जो आउटपुट निकलता है ना,
हाँ,
उसको वापस उसके इनपुट में जोड़ा जाता है और फिर उसे नॉर्मलाइज किया जाता है। इसे कहते हैं रेजिड्यूअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन।
रेजिड्यूअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन, ये क्यों जरूरी है?
देखिए, जब जानकारी कई परतों से गुजरती है तो वो खो सकती है या बहुत बदल सकती है। रेसिड्यूअल कनेक्शन एक तरह का शॉर्टकट बनाता है।
शॉर्टकट?
हाँ, जानकारी सीधे आगे भी जा सकती है, इससे ट्रेनिंग स्थिर रहती है, खासकर गहरे नेटवर्क में। और लेयर नॉर्मलाइजेशन आउटपुट को एक रेंज में रखता है, ये दोनों मिलकर ट्रेनिंग को आसान और प्रभावी बनाते हैं।
अच्छा, ये तो परतों की बनावट हुई। अब आते हैं उस मेन चीज पर, अटेंशन। ये है क्या असल में?
अटेंशन का आइडिया बहुत स्वाभाविक है। जैसे हम कोई वाक्य पढ़ते हैं तो हर शब्द पर बराबर ध्यान नहीं देते ना?
नहीं, कुछ शब्द ज्यादा जरूरी लगते हैं।
बिल्कुल, जैसे वाक्य है, दिल्ली भारत की राजधानी है। इसमें दिल्ली और राजधानी शायद की या है से ज्यादा जरूरी है। अटेंशन मैकेनिज्म मॉडल को यही सिखाता है इनपुट के किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना है।
ये तो समझ आया, पर ट्रांसफॉर्मर में सेल्फ अटेंशन की बात होती है, ये क्या है?
सेल्फ अटेंशन, हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर का दिल है। इसमें क्या होता है कि वाक्य का हर शब्द वो सिर्फ इनपुट के किसी खास हिस्से पर नहीं, बल्कि उसी वाक्य के बाकी सभी शब्दों पर ध्यान देता है, खुद पर भी।
हर शब्द बाकी सब पर?
हाँ, वो हर दूसरे शब्द से पूछता है, तो मेरे मतलब को समझने के लिए कितने जरूरी हो। इससे मॉडल को पूरे वाक्य का कॉन्टेक्स्ट एक साथ मिल जाता है, कौन से शब्द जुड़े हैं भले ही वो दूर क्यों ना हो।
अरे वाह, मतलब हर शब्द पूरे वाक्य के आईने में खुद को देख रहा है। ये आरएनएन से बेहतर कैसे हुआ?
कई तरीकों से। सबसे बड़ा फायदा पैरेललिज्म, क्योंकि हर शब्द एक साथ बाकी सबको देख सकता है, ये सारी कैलकुलेशन पैरेलल में हो सकती हैं।
अच्छा, जीपीयूज का पूरा इस्तेमाल?
एकदम, इससे ट्रेनिंग बहुत तेज हो जाती है। दूसरा फायदा लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी, क्योंकि शब्द सीधे एक दूसरे को देख सकते हैं, चाहे कितनी भी दूरी हो वो रिश्ता समझ लेते हैं। आरएनएन वाली भूलने की बीमारी यहां नहीं। और तीसरा, हमें ये समझने में आसानी होती है कि मॉडल किस शब्द पर क्यों ध्यान दे रहा है।
ये तो सच में क्रांतिकारी है, पर ये होता कैसे है? कोई क्वेरी की वैल्यू की बात करते हैं लोग।
हाँ, इसके पीछे का गणित स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट अटेंशन कहलाता है। देखिए, हर शब्द के लिए तीन वेक्टर बनते हैं, क्वेरी, की और वैल्यू,
क्यू के वी।
हाँ, क्वेरी मतलब शब्द का सवाल, मुझे कहां ध्यान देना है। की मतलब हर शब्द का लेबल, मैं इस बारे में हूं। और वैल्यू मतलब हर शब्द की जानकारी, ये मेरा मतलब है।
ठीक है,
अब हर शब्द की क्वेरी को बाकी सभी शब्दों की से मिलाया जाता है। इससे पता चलता है कि कौन सा शब्द कितना जरूरी है, फिर उन जरूरी शब्दों की वैल्यूज का एक वेटेड सम मतलब भारित योग निकाला जाता है।
मतलब जो शब्द ज्यादा जरूरी उसकी वैल्यू का वजन ज्यादा।
बिल्कुल, और यही वेटेड सम उस शब्द का अटेंशन आउटपुट बन जाता है। इसमें बाकी वाक्य की जरूरी जानकारी मिली होती है।
वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है। और फिर आता है मल्टी हेड अटेंशन, इसका क्या मतलब? बहुत सारे सिर?
हाँ, कह सकते हैं। मल्टी हेड का मतलब है कि ये क्यू के वी वाली अटेंशन प्रक्रिया एक बार नहीं बल्कि कई बार एक साथ चलती है, पैरेलल में।
कई बार
मतलब?
जैसे
मान लीजिए आठ बार, पेपर में आठ हेड्स का जिक्र था, हर हेड इनपुट को थोड़े अलग नजरिए से देखता है।
अलग नजरिया मतलब?
मतलब शायद एक हेड ग्रामर के रिश्तों पर ध्यान दे रहा हो, दूसरा समान अर्थ वाले शब्दों पर, तीसरा टॉपिक से जुड़े शब्दों पर। हर हेड अलग तरह के पैटर्न सीखता है।
अच्छा।
फिर इन सारे 8 हेड्स के आउटपुट को मिलाकर एक फाइनल ज्यादा रिच आउटपुट बनता है, जैसे 8 एक्सपर्ट मिलकर किसी प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखकर हल निकाल रहे हो।
ये तो कमाल है, मतलब जानकारी को कई तरह से परखना। अब ये सब एनकोडर और डिकोडर में कैसे फिट होता है?
पहले एनकोडर की बात करते हैं।
ठीक है।
एनकोडर की हर परत में 6 परतें थी ना, 2 मेन सब लेयर्स होती हैं। पहली है मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, यही वाली जिसकी हमने बात की।
हाँ।
इनपुट वाक्य का हर शब्द बाकी सबको देखकर अपना कॉन्टेक्स्ट समझता है। दूसरी सब लेयर एक सिंपल सा फीड फॉरवर्ड नेटवर्क FFN है।
फीड फॉरवर्ड?
हाँ, ये एक स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क है जो अटेंशन से मिले आउटपुट को लेता है और उसे हर शब्द के लेवल पर और प्रोसेस करता है। और हाँ, दोनों के बाद वो रेजिडुअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन।
तो एनकोडर का काम है इनपुट को अच्छे से समझकर उसका एक गणितीय रूप बनाना।
बिल्कुल, एक रिच रिप्रेजेंटेशन तैयार करना।
समझ गई। अब डिकोडर, वो इस जानकारी से आउटपुट कैसे बनाता है, उसमें क्या अलग है?
डिकोडर भी 6 परतों का है, पर हर परत में 3 सब लेयर्स हैं।
पहली वाली इनकोडर जैसी ही है, मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन, पर यहाँ एक ट्विस्ट है, इसे मास्क्ड कहते हैं। मास्क्ड कुछ छिपाया जाता है।
हाँ, जब डिकोडर आउटपुट बना रहा होता है, मान लीजिए हिंदी अनुवाद का एक एक शब्द, तो किसी भी शब्द को बनाते समय वो सिर्फ खुद को और अपने से पहले वाले शब्दों को ही देख सकता है, आगे के आने वाला है वो नहीं देख सकता।
अच्छा।
क्यों? ताकि मॉडल चीटिंग ना कर सके। अगर उसे पहले ही पता होगा कि आगे क्या लिखना है तो वो सीखेगा कैसे? ये मास्क पक्का करता है कि मॉडल वाकई अगला शब्द अनुमान लगाना सीखे, न कि बस कॉपी करे।
हाँ, ये तो जरूरी है।
ये हुई पहली सब लेयर। दूसरी कौन सी है डिकोडर में?
दूसरी वाली बहुत खास है, इसे क्रॉस अटेंशन कहते हैं या एनकोडर डिकोडर अटेंशन। यहाँ डिकोडर एनकोडर से आई जानकारी पर ध्यान देता है।
अच्छा, एनकोडर वाले आउटपुट पर?
हाँ, याद है एनकोडर ने इनपुट का रिच रिप्रेजेंटेशन बनाया था। अब डिकोडर उससे पूछता है, मैं जो आउटपुट शब्द बना रहा हूँ उसके लिए तुम्हारे पास यानी इनपुट वाक्य में क्या जरूरी जानकारी है? यहीं पर अंग्रेजी और हिंदी वाक्य जुड़ते हैं।
समझ गए, ये पुल है दोनों के बीच।
और तीसरी सब लेयर?
तीसरी फिर से वही फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है जैसा एनकोडर में था। ये क्रॉस अटेंशन के आउटपुट को और बेहतर बनाता है। और हाँ, तीनों के बाद रेसिडुअल कनेक्शन और लेयर नॉर्मलाइजेशन।
ठीक है, तो ये एनकोडर और डिकोडर की कहानी हुई। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी चीजें थी, जैसे शब्दों को नंबर्स में बदलना।
हाँ, दो और बहुत जरूरी बातें हैं। पहली है एम्बेडिंग्स। कंप्यूटर शब्दों को सीधे नहीं समझते तो हर शब्द को नंबर्स के एक वेक्टर में बदला जाता है। ये वेक्टर शब्द का मतलब दर्शाता है।
एम्बेडिंग्स।
और ट्रांसफॉर्मर में अक्सर इनपुट और आउटपुट शब्दों के लिए एक ही एम्बेडिंग यूज होती है। ये मॉडल को और कुशल बनाता है।
और दूसरी जरूरी चीज, आपने कहा था ट्रांसफॉर्मर पैरेलल है, क्रम नहीं देखता, तो राम ने श्याम को मारा और श्याम ने राम को मारा, ये अलग कैसे पता चलते हैं?
बहुत बढ़िया सवाल। ये ट्रांसफॉर्मर की एक और चालाकी है, पोजिशनल इनकोडिंग।
पोजिशन, जगह।
हाँ, क्योंकि इसमें RNN जैसा क्रम नहीं है तो मॉडल को शब्दों की पोजिशन बताने के लिए हर शब्द की एम्बेडिंग में उसकी जगह की जानकारी भी जोड़ी जाती है एक और वेक्टर के जरिए।
ये कैसे काम करता है? क्या बस नंबर जोड़ते हैं 1, 2, 3?
नहीं, उससे थोड़ा जटिल है। ये खास साइन और कोसाइन फंक्शन से वेक्टर बनाता है। इसका फायदा ये है कि मॉडल ना सिर्फ शब्द की एब्सोल्यूट पोजीशन समझता है, जैसे ये 5वां शब्द है, बल्कि 2 शब्दों के बीच की दूरी भी समझ पाता है।
अच्छा।
इसके बिना ट्रांसफॉर्मर भाषा की बनावट को समझ ही नहीं पाता। राम ने श्याम को मारा, उसके लिए श्याम ने राम को मारा जैसा ही होता।
तो पोजिशनल एनकोडिंग शब्दों का क्रम बताती है, अब समझ आया। तो इस पूरे नए आर्किटेक्चर का नतीजा क्या रहा, क्या बदला इसने?
जैसा हमने कहा, नतीजों में बड़ा सुधार हुआ, अनुवाद में रिकॉर्ड टूटे, लेकिन असली क्रांति तरीके में थी।
तरीके में मतलब ट्रेनिंग?
हाँ, ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन पूरी तरह पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए बना था। मतलब आप इसे बहुत बड़े डेटा सेट पर, बहुत पावरफुल हार्डवेयर पर पहले से कहीं ज्यादा तेजी से ट्रेन कर सकते थे। इसने AI मॉडल के साइज की सीमाएं तोड़ दी। अब हम अरबों खरबों पैरामीटर वाले मॉडल बना सकते थे। आज के जो LLMs है ना, उनकी नींव यहीं पड़ी।
तो तेज ट्रेनिंग, बड़े मॉडल, ये मुख्य फायदे थे। क्या पेपर में कुछ कमियां भी बताई थी?
हाँ, लेखकों ने बताया था, एक तो ये कि टेक्स्ट जनरेट करना अभी भी क्रमवार था, ऑटो रिग्रेसिव, एक बार में एक शब्द। ट्रेनिंग पैरेलल थी पर आउटपुट बनाना नहीं।
अच्छा।
और दूसरा, ये मॉडल तब मुख्य रूप से टेक्स्ट के लिए था, इमेज या ऑडियो जैसी चीजों पर इसे लगाना बाकी था।
और यहीं से शायद भविष्य के सवाल उठते हैं।
बिल्कुल, कैसे आउटपुट जनरेशन तेज हो, कैसे इसे दूसरी तरह की जानकारी के लिए बेहतर बनाया जाए। ट्रांसफॉर्मर ने जो नींव रखी उस पर आज भी काम चल रहा है।
तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने देखा कि AI कैसे RNN, CNN की क्रमवार दुनिया से निकलकर ट्रांसफॉर्मर के पैरेलल अटेंशन वाली दुनिया में आया।
हाँ।
और इसका नतीजा हुआ तेज ट्रेनिंग, बड़े मॉडल और बेहतर नतीजे। अटेंशन इज ऑल यू नीड ने सच में आधुनिक AI का रास्ता खोल दिया।
ये सोचना ही अजीब है कि सिर्फ ध्यान देने का तरीका बदलकर इतना बड़ा असर पड़ा। और जैसा पेपर ने खुद कहा था कि जनरेशन क्रमवार है और ये टेक्स्ट आधारित था। ये हमें एक सवाल पर छोड़ता है।
क्या सवाल?
कि ट्रांसफॉर्मर के बाद अगला बड़ा कदम क्या होगा?
AI को अब सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो, कोड सब कुछ एक साथ समझना है और जवाब भी तेज चाहिए। क्या ट्रांसफॉर्मर काफी है या हमें किसी और नए आइडिया की जरूरत पड़ेगी, शायद अटेंशन से भी आगे कुछ?
सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।